पहले दौर में जहां माँ बाप जाते थे बच्चे भी वहीं जाते थे, कोई खुशी से जाए ना खुशी से जाए, सब नहीं जाना है। आज हर बच्चे की अपनी मर्जी पूछी जाती है, बेटा आप जाना चाहते हैं कि नहीं, जाना है नहीं किसी को कहते हैं, कोई मानता नहीं। और अक्सर शादियों पे भी माँ बाप यही बुड़बुड़ाते जाते हैं, इनको नहीं रहने तो हम खुद चलते हैं, वजह के आज वो बॉन्डिंग कम होती जा रही है। लेकिन हम नमाज पे ही रहते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आप वजू किया जाए नमाज पे खड़े हो गए, आपको एकदम फीलिंग आने लगी मैं अल्लाह से मिलने लगी हूँ, अभी देखना बात के। फिर आप किसी दोस्त के घर जब जा रही होती हैं तो आप सोचती हैं अच्छा आज उससे ये दुख सुख करूंगी, आज उससे इस बात पे मशवरा लूंगी। होते हैं कई छोटे मोटे काम होते हैं, देखिए जहां दिल मिले होते हैं इंसान अपने मशवरे लेता भी है देता भी है और बहुत सारी शेयरिंग्स करता है। नमाज में अल्लाह सुबहाना ताला से दुख सुख करना, जितनी गिबतें करनी है नमाज में कीजिए, जितनी कंप्लेंस करनी है नमाज में कीजिए, जितनी अपनी बीमारियां दर्दें तकलीफें परेशानियां बतानी है सब नमाज में बताइए। इन नमाज को बसी बखुज नहीं अल्लाह, दिन में 5 बार अल्लाह सुब्हान ताला मुझे और आपको मौका देते हैं कि आओ मेरे करीब, हय अल सला हय अल फला, कम टूवर्ड सलात कम टूवर्ड सक्सेस, कामयाबी की तरफ आओ नमाज की तरफ आओ। लेकिन अफसोस की बात है जो रब दिन में 5 बार अजान के जरिए हमें कहता है सक्सेसफुल होना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, हम वही कामयाबी पाने के लिए दिन भर बाहर फिरते हैं, सुबह स्कूल जाएंगे कॉलेज जाएंगे जॉब पे जाएंगे काम करेंगे, सारा दिन हम भागते हैं कामयाब होने के लिए और नमाज हमारी पीछे रह जाती है। जिस नमाज के जरिए असल कामयाबी मिलनी थी ना उसको हमने पीछे डाल दिया और हम सोचते हैं कि हम अपनी कोशिशों से कामयाब हो जाएंगे। एक माँ अपने बच्चे को सुबह 7 बजे उठाती है स्कूल जाने के लिए और अगर वही माँ अपने उस बच्चे को 5 बजे नमाज के लिए नहीं उठाती तो मान लीजिए वो उसकी असली माँ नहीं है, सगी माँ नहीं हो सकती है। सगी माँ को यकीन है कि अगर मेरा बच्चा सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जाएगा तो कामयाब होगा, तो उसको ये भी यकीन है कि मेरा बच्चा 5 बजे उठ के मस्जिद में जाएगा तो ज्यादा कामयाब होगा। आज कितनी तेजी से हम मुसलमानों की जिंदगियां बदलती जा रही हैं। एक वो वक्त था कि हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम इकट्ठे रहते थे सब कॉन्टिनेंट में, एक मुसलमान का घर है तो एक हिंदू का घर है तो एक सिख का घर है, हो सकता है एक अंग्रेज का घर हो, किस चीज से फर्क पता चलता था आप अपने बड़ों को पूछिए जाके, कैसे पता चलता था कि मुस्लिम का घर कौन सा है कौन सा है। कुछ और भी पहचान थी लेकिन एक पहचान ये थी कि मुसलमानों के घर से सुबह उठते ही कुरान की आवाजें आती थी और कुछ के घरों से भजन की आवाजें आती थी, कुछ के घरों से गाने बजाने की आवाजें आती थी। आप सब ने मेरा हाल है कमोबेश अपने खानदान के किसी बड़े को नानी है या दादी या साथ सुबह उठ के ऊंची आवाज से कुरान पढ़ते सुना होगा। हमारे तो घरों के नक्शे ही और होते थे फजर के वक्त, आज कितनी तेजी से हमारे घरों के नक्शे बदलते जा रहे हैं। फजर के 5 वक्त के नमाजी कितने हैं और मैं रमजान की बात नहीं कर रही, तकरीबन 18-20 दिन गुजर गए रमजान को हमसे गुजरे हुए, जो मस्जिदों की हाजिरी रमजान में थी आज किधर गई। ईद के दिन कितने लोगों ने जाकर मस्जिद में जुमा अदा किया या मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी। क्या अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि बस कोई मौका आए तो खूब इबादत कर लो और उसके बाद अपनी जिंदगी में खो जाओ। क्या अल्लाह सुब्हान ताला को ये मेरी आपकी उठक बैठक चाहिए जो हम एक एक्सरसाइज के तौर पे खड़े हो गए रुकू किया सजदा किया और अस्सलाम वालेकुम कहकर चल पड़ते हैं। कभी आपने सोचा हम नमाज में अल्लाह ताला से बातें क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तारीफों पे तारीफें करते हैं, हमारा दिल बोलता है अल्लाह सारे शुक्र तेरे, सारे जज्बे तेरे लिए, सारी तारीफें तेरे लिए। अब एक बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे बता सकते हैं कि उसकी जिंदगी में डिप्रेशन आ सकता है, इम्पॉसिबल है। एक बंदा जब अल्लाह का दिल की गहराई से शुक्र करता है ना तो जिंदगी से गम का नाम भी मिट जाता है। अब देखिए कि जैसे शुक्र लफ्ज को आप लिख कर देख लें उर्दू में, शुक्र कर ले शुगर कर ले, चीनी को क्या कहते हैं शुगर, कड़वी चाय के अंदर आप 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो चाय मीठी हो जाती है ना, जिंदगी के अंदर शुक्र आ जाता है ना तो जिंदगी मीठी हो जाती है। जो लोग ना शुक्रे हैं अनग्रेटफुल हैं वो रोते हैं, जिस दिन दुनिया में सच्चा इस्लाम आएगा उस दिन दुनिया में डिप्रेशन का एक मरीज भी नहीं रहेगा। आप सीरत पढ़ के देखिए, सहाबा की जिंदगियां पढ़िए, ताबईन की जिंदगियां पढ़ लीजिए, क्लोज सर्कट में या वाइड सर्कट में आपको एक मरीज डिप्रेशन का नहीं दिखेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि वहां जंगें भी थी, हर वक्त खौफ भी था, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल अपनी नबवी जिंदगी में एक बार भी डिप्रेस नहीं दिखे। ये तो बिगड़े हुए लोगों के दौर की बातें हो सकती हैं, कहीं स्ट्रेस हो गया, कहीं टेंशन हो गई, कहीं डिप्रेशन हो गया। सच्चे मोमिन को डिप्रेशन नहीं होता क्योंकि वो दिन में 5 बार अल्लाह को सुना के आता है कि या कना बुदु वैया कनस्तई, अल्लाह सिर्फ तू है वो हस्ती जिससे मैं कुछ मांग सकती हूँ, और सिर्फ तू है जिसके आगे झुकती हूँ बंदी बनकर, गुलाम बनकर तेरे आगे झुकती भी हूँ, तुझे भी मानती हूँ, तेरे हुक्मों को भी मानती हूँ, तुझसे डरती भी हूँ, तुझसे उम्मीद भी रखती हूँ। एक ईमान वाले का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बड़ा जिंदा ताल्लुक होता है। ये ऐसा नहीं है कि वन वे तौर पर बस आप कुछ जुमले सुना के जल्दी जल्दी सलाम फेर के आकर बाकी वापस आके बैठ गए। हम में से तो अक्सर का हाल यह है कि कहते नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ओला गाइड मी, ओला गिव मी गाइडेंस, और जब गाइडेंस मिलने लगती है तो घबरा के भाग जाते हैं। अमली जिंदगी में जब अल्लाह सुबहान तला हमें हिदायत देना चाहते हैं तो हमें खौफ आता है, हम कहते हैं अल्लाह गिव मी गाइडेंस बट नॉट नाउ, अभी तो मैं सिर्फ 18 हूँ, अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो मुझे नहीं चाहिए, अभी नहीं गाइडेंस लूंगी। कई लोग कहते हैं जरा हज कर लें तो फिर हिदायत लेंगे, और जरा बच्ची की शादी हो जाए तो हिदायत लेंगे। एक सिस्टर ने भी मेरे से शेयरिंग की कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह द्वारा कुरान सुना, अल्लाह ताला ने ऐसा उनका दिल खोल दिया। कहने लगी कि मैंने नियत कर ली, पता नहीं ईद वाले नहीं कहती मेरे घर पार्टी थी, वो पार्टी भी कोई दूसरी थी, उन्होंने खुद नाम लिया मैं नहीं लेती। कहती मुझे बड़ी शर्म आई कि मैंने सारा रमजान क्या किया, दौरा कुरान करती रही हूँ, मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ है, और आज मैंने ईद के दिन किस नाम की पार्टी रख ली। खैर अब क्या करूं, मियाँ से बात की, कहते चुप करो अब रखी है तो इसको भुगतो बाद में देखना। खैर कहती मैं बैठी थी, एकदम मैंने कहा मैं सबको बता रही हूँ आज से मैं हिजाब करी, वो अल्ट्रा मोड सिस्टर है, नाम लूंगी तो शायद आप में से भी कुछ जानते हो, रिप्रेजेंट करती हैं एक पूरे मीडिया को, अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देता है तो देता है। खैर कहती कि मेरे दिल में गिल्ट तो आ ही गया, फिर मैंने कहा अच्छा ये मेरी आखिरी पार्टी है जो मैंने आज इस नाम पर रखी है। कहती मैंने घर वालों से कहा कि मैं हिजाब करूंगी, अब उनकी पार्टी में मिक्सिंग की होती होगी, मुझे खुद उनकी बातों से समझ आ रहा, उसने दर्स में आके शेयर किया, कोठे की छुपी बात नहीं थी। तो कहती अब मेरे घर वालों के मुंह लटक गए, कुछ तो हा हो रहा करने लगे, कुछ कह अब आप ऐसे करेंगी, सोच लें देख लें, मुझे तमाशा ना बनाना। कहती मैंने कहा साफ बात है और उसका प्रोफेशन ही ये है जो बनना सुनना संवारना। कहती मैं खैर तैयार हुई जो भी, फिर मैंने हिजाब बांध लिया, हिजाब पहन लिया। है उस दिन अब लोगों के लिए तो अनएक्सपेक्टेड था, यानी आप इमेजिन कीजिए कि लोग इतनी जरूरत दूसरों को दे देते हैं कि आपकी दोस्त का मियाँ आके आपका हिजाब पहन दे, तुम्हें क्या हो गया, ये क्यों पहना, इसको उतारो, ये क्या लगी, ये क्या वो बन रही। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे दोस्तों के मियाँ को तो ये जरूरत नहीं है, करके तो देखे कोई ये जरूरत, लेकिन लोग सारी हदें पार कर चुके होते हैं सिर्फ फन के नाम पर, ग्लैमर के नाम पर, और अल्लाह ने दिल खोल दिया। कहने लगी उसके उनके घर का अच्छा आज की पार्टी के बाद हिजाब कर लेना, तो उनको दिल में लगी हुई। कहती देखो मैं अगर आज नहीं करूंगी तो मुझे पता मैं फिर कभी नहीं करूंगी क्योंकि कल ही रमजान गुजरा, तो माशाल्लाह अभी अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे, वो इस चीज पे कायम है और अल्लाह उनको आगे लेके जा रहा है। गुना को छोड़ना है तो अभी नहीं तो कभी नहीं, नो और नेवर, किताब है मैंने पढ़ाई भी इंग्लिश की किताब है, नो और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। गुना को छोड़ना है ना तो उसको आप डिले नहीं कर सकते, गाइडेंस डिलेट गाइडेंस डिनाइट। कभी आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे हो, पैल टॉक चल रहा हो, आप बैठे हो तो एकदम आपको किसी के रूम से इनविटेशन आती है, पॉप होती है आके विंडो, अगर आप विद इन फ्यू सेकेंड आप उसको क्लिक करके उस रूम में आ जाए तो है, नहीं तो उसके बाद वो विंडो गायब हो जाती है। गाइडेंस की भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी ही पॉपअप रखी होती है हमारी जिंदगी में, कोई मोड़ ही आता है, वल्ला ही हो सकता है आज ही हमारा वो मोड़ हो, एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारी जिंदगी में, जिसने उसको एक्सेप्ट करके खुद को हिदायत के रास्ते पर डाल लिया अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। और ये भी याद रखिए कि हिदायत बार बार नॉक नहीं करती, हिदायत एक बड़ी गयूर मेहमान है, कोई आपके घर का एक दफा के दरवाजा नॉक करे और उसको पता है कि आप अंदर और आप नहीं खोल रहे, दोबारा भी कर देगा और जब आपको देखेगा आप सामने और आप खोल नहीं रहे, उसके बाद ऐसा रूठेगा कभी आपके घर नहीं आएगा कि मुझे जाना ही नहीं है आपके घर। अल्लाह ने रमजान में कई दस्तकें हमारे दिलों में दिलवाई होंगी। दिल खोलो। अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, क्या बस जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया उससे भी कोई बड़ा खुशकिस्मत है। जब हम कुरान सुनते हैं ना, इसका पानी हमारे दिल को नरम करता है, और नरम मट्टी में बीज डल जाए ना तो पौधे बड़े जरखेज होते हैं। जिस दिन से आई हूँ ये सुन रही हूँ कि बारिशें नहीं हो रही स्टेट में, पिछले 3-4 साल से ड्राउट है और आखिरी साल रह गया, पानी खत्म हो रहा है, जलजलों का बड़ा खतरा है। कल मुझे कोई सिस्टर कह रही थी कि इंतहाई खतरा कैलिफोर्निया में जलजले का, क्योंकि नीचे से जमीन खुश्क हो गई है इतनी ज्यादा कि अब वो अपने इंजीनियर्स को बुला के बैठ रहे हैं, जमा कर रहे हैं व्हाट्स एवर, जो भी आप तक भी कुछ खबरें ऐसी होती होंगी, क्योंकि डर है किसी वक्त भी जलजले आने का। इसी तरह मैं फ्लोरिडा में जब गई तो मुझे किसी और ने उधर का डरा दिया कि वहां सिंक होल्स बहुत सारे हैं ना, ऊपर से रस्ट रह जाता है और नीचे से पानी मट्टी को खा चुका होता है। मुझे वहां उन्होंने एक जगह दिखाई कि यहाँ बिल्कुल एक घर था, और ये पिछले साल, ये 2 साल पहले जब मैं आई थी, इस साल भी गई लेकिन 2 साल पहले ये बात सुनी थी, तो उन्होंने बताया कि समंदर के किनारे घर है, किसी को नहीं पता, जैसे अब सबको अल्लाह महफूज रखे ये घर है, किसी को नहीं पता इसके नीचे क्या है। घर के फ्लोर है, एक नीचे का एक ऊपर का, दो भाई थे घर में और सो रहे थे, एक का कमरा नीचे था हम ग्राउंड फ्लोर पे, एक ऊपर था, और वो रात को सब ठीक ठाक सोए हैं। जब रात के बाद सुबह उठ के नीचे आया ऊपर वाला, आवाज दे रहा है किधर है किधर है, आया नहीं निकल नहीं, जब उसका कमरा खोला, कैन यू बिलीव, उसका बेड, उसका कमरा पूरा जो नीचे अंदर से डूब चुका है पानी में, सिंक होल हो चुका है, नीचे उसके पाए का डंडा दिख रहा है लेकिन वो पता नहीं कहाँ गहराइयों में जा चुके हैं। तो मैंने सोचा इतने खतरनाक इलाकों में भी लोग रहते हैं ना, तो पूरी जमीन के लिए अल्लाह ने क्या कहा, इंसान ये जमीन जलजलों का शिकार होने वाली है, इस जमीन पे फ्लडिंग होने वाली है, सैलाब आएंगे, पहाड़ हिलाए जाएंगे, सूरज चांद सितारे जमा कर दिए जाएंगे, हम किस तरह यहाँ आराम से बैठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बेचैन रहते थे, खौफ ज़दा होते थे, तेज हवा चलती थी तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी के चेहरे का रंग बदल जाता था, कहते थे आयशा मुझे डर है कहीं कौमे आद वाली हवा हम पर ना छूटे, फिर जब बारिश बरस जाती पानी होता तो मुतमईन हो जाते कि ये कोई आग का अजाब नहीं आया। आप कहा करते थे कि आयशा मैं कैसे इत्मीनान से बैठूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसराफील ने सूर का लुकमा मुंह में डाला हुआ है, यानी जैसे ये माइक मेरे हाथ में है ना, इसको बहुत बड़ा आप माइक कर ले, और इसराफील जिनके जिम्मे अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है कि उन्होंने सूर में फूक मारनी है, वो इसके अंदर फूक मारने के लिए तैयार खड़े हैं। काश मैं कैसे चैन लूं। देखिए किसी को इमेजिनेशन में लाकर सोचिए कि एक शख्स है वो समंदर में सफर कर रहा था और एकदम समंदर में तूफान आया तो कश्ती डोलने लगी, और जब वो डूबने लगा तो उसने समंदर में छलांग लगा दी कि शायद कुछ हो, अब तो डूब ही गया, लेकिन जरा सा नीचे गया तो उसके पांव किसी चीज पे जम गए। उसने सोचा कि ये तो कोई चट्टान आ गई, अब तो मैं बच ही जाऊंगा, कोई रेस्क्यू टीम आएगी मुझे बचा के ले जाएगी। लेकिन जब थोड़ी सी उसको होश आए तो वो देखे कि जिसको मैं एक चट्टान समझ रहा हूं वो तो टाइम बॉम्ब है, बारूद से भरा हुआ एक ऐसा ढेर है कि जिसका रिमोट भी ऊपर किसी के हाथ में है और अभी थोड़ी लम्हे में किसी वक्त भी वो चलने वाला है। मुझे बताइए क्या वो उस टाइम बॉम्ब पे खड़ा होके मस्ती कर सकता है, लेयर मोड में रह सकता है? नहीं, वो तो हो सकता है दोबारा पानी में छलांग लगा दे कि पानी से तो हो सकता है बच जाऊं लेकिन बारूद के इस ढेर पे कैसे बचूं। तो इस जमीन की हैसियत क्या एक टाइम बॉम्ब से फर्क है? अल्लाह ताला ने फ़ैन अमरुहु इज़ा अराद शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून, जब अल्लाह ताला ने एक कुन कहना है क़यामत आ जाएगी और हम कहाँ होंगे, और हमें उस क़यामत की क्या फिक्र है, हमारी तो अपनी क़यामत करीब है। इज़ा मात अल इंसान इनक़ते अमलुहु, जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है उसका तो नामे अमल मुनक़ते हो जाता है। इल्ला मिन सलास, 3 चीज़ें हैं जो उसके बाद उसके पीछे रहती हैं। पहली चीज वलदुन सालेहुन जदूहु लहू बादहु, उसके लिए नेक औलाद जो उसके लिए बाद में दुआ करती है। हमारी औलादें अगर नेकी पे हैं तो ये हमारे लिए एक ऑन गोइंग चैरिटी बनेगी, ये हमारा एक अकाउंट बनेगा जो हम आज दुनिया में एक सेविंग अकाउंट के नाम पे खोल के जाते हैं कि चलो अल्लाह हमारी नमाजें तो पूरी हुई, अब हमारे बच्चों की नमाजें इंशाल्लाह हमारे ही अकाउंट में डिपॉजिट होंगी। क्या हम अपने बच्चों की सूरत में बेहतरीन सदका जारिया छोड़ रहे हैं? वट एम लिविंग बिहाइंड? आज अगर दुनिया से जाने के लिए वापसी का बुलावा आ जाए तो क्या मैंने अपने बच्चों को इस काबिल कर दिया कि मेरे बाद वो एक बेहतरीन इंसान के तौर पर नेकियों के तोहफे मेरे लिए भेजें? हाल तो आज ये है कि दुनिया में बच्चे माँ बाप की मानते हुए नहीं दिखते। पहले बच्चे माँ बाप की मानते थे, आज मैंने देखा कि माँ बाप बच्चों की मानते हैं। पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, आजकल मैंने माँ बाप को बच्चों से डरते देखा। पहले बच्चे माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करते थे, आजकल माँ बाप अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिशों में हमारी तो अपसाइड डाउन ही हो गई। हालात हर चीज तलपट हो गई, तरजीहात बदल गई, रिवायात बदल गई, दीन को तो एक साइड पे कर दीजिए, हम तो अपने बाप दादा के तौर तरीकों से बदल गए। जो दादा बाप चचा नाना के साथ ताल्लुकात में हदबंदियां थी, जो उनके घर में आते ही माहौल बनता था, आज की बाप बेटी का कोई फर्क ही नहीं लगता। कैसे हो सकता कि एक शख्स अपने बच्चियों और अपने घर के छोटे बच्चों के साथ वही काम करता और देखता देखा जाए कि जो हो सकता है कि किसी दौर में लोग दोस्तों में देखते थे? भाई बहन रिश्ते नाते इतनी जल्दी उम्मत मुस्लिमा में तब्दीलियां क्यों आ रही हैं? उसकी वजह यह है कि आज हमारा इस दुनिया से रابطہ ज्यादा हो गया, अल्लाह से रابطہ कमजोर है। नमाज हम 5 वक्त की आज भी पढ़ते हैं इल्ला माशाल्लाह, हालांकि सब नहीं पढ़ते। एक रिपोर्ट देखी थी कि जिसमें उन्होंने बताया पूरे पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क का उन्होंने सर्वे करवाया था इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में से, और पता चला था कि पाकिस्तान में 98% लोग नमाज नहीं पढ़ते। क्योंकि आप देखिए आबादी में लेबर तबका भी है, मासियां भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, चंद लोग हैं जो मस्जिदों की रौनक हैं या जिनके घरों में पढ़ते हैं। आप अपने घरों को हिसाब लगा लीजिए, घर में 2 बुजुर्ग पढ़ लेंगे, बाकी कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। 5 वक्त की नमाज पढ़ना आज लोगों को बहुत बड़ी नेकी लगता है। तो किसी का एक कोटेशन था, उन्होंने लिखा था कि 5 वक्त नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत रिलीजियस हैं, इसका मतलब यह कि आप मुस्लिम हैं। ये तो द लीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपके मेरे मुसलमान होने की रिक्वायरमेंट क्या है कि हम 5 वक्त दिन में जाकर अल्लाह ताला को रोल कॉल लगवाते हैं कि अल्लाह स्टिल आई एम मुस्लिम, स्टिल आई एम मुस्लिम। और हर नमाज में हम एनर्जी लेकर आते हैं, वही बात गैस लेके आते हैं कि हम इस नमाज से जो ईमान लेंगे उससे हम नेकियां करेंगे। जैसे आप देखिए, मैंने कई दफा मिसाल दी, आपको भी दे देती हूँ, कि कुछ 2-3 दोस्त हैं वो एक ही गैस स्टेशन पे इकट्ठे मिले और सबके पास एक ही ब्रांड की गाड़ी थी, एक ही नई ब्रांड न्यू गाड़ी थी, उन्होंने गाड़ी को भर लिया गैस से। फिर 1 महीने के बाद दोबारा मिलते हैं, तो जब वो मिले तो एक कहता है कि भाई मैं तो जब उस दिन आया था उसके बाद आज ही आया हूँ। दूसरा कहता है मैं 15 दिन पहले भी आया था। तीसरा कहता है कि भाई मैं तो हर हफ्ते आता रहा हूँ। अब बड़ी ऑब्वियस बात है कि फर्क किस बात का है, जिसने ज्यादा गाड़ी चलाई वो उसको गैस की ज्यादा जरूरत पड़ी, ऐसी है ना, जिसने कम चलाई उसको कम जरूरत पड़ी। जब हम अपनी नमाज को नेकियों में ढालते हैं ना, एक नमाज के बाद बीच में और नेकियां करने लगते हैं, तो हमारा वो ईमान की गैस यूटिलाइज होती है।